हाँ, मैं तुम्हारा पर्सनल पति हूँ और सिर्फ तुम्हें हक है मुझे देखने का, मेरे इतने करीब आने का, मुझे प्यार करने का। इनाया ने नाक सिकोड़ते हुए उसके सीने में अपना चेहरा रगड़ा और अपनी पतली गोरी बाहों को उसकी पीठ पर लपेट दिया। कायरव उसकी सदा पर बेसाख्ता हंसा, इनाया पर अपनी बाहों के घेरे को कसते हुए उसके सर को चूम लिया। अभी कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इनाया और कायरव चौंकते हुए झटके से एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि आज तो यहाँ सिर्फ वही दोनों थे। उन्होंने तुरंत नजरें घुमाई। गेट के पास आशा सर झुकाए खड़ी थी, उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। क्या हुआ आशा, तुम यहाँ और कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है?
सर, बड़ी मैडम आई हैं, कह रही हैं मैडम से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तो उनसे मिलना चाहती हैं, आशा ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। इनाया थोड़ी कंफ्यूज नजर आई, वहीं कायरव को झटका सा लगा।
मॉम आई हैं?
यस सर।
इनाया से मिलने मॉम आई हैं और आने से पहले मुझे बताया तक नहीं, ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम आ गया उन्हें इनाया से?
कायरव के माथे पर कुछ लकीरें उभर आईं, एक साथ कई ख्याल मन में आने लगे।
तुम उन्हें बिठाओ, हमारे हैं।
कायरव ने इशारा किया तो आशा सर हिलाते हुए चली गई। कायरव ने अब नजरें इनाया की तरफ खमाई, जो हैरान परेशान से उसे देख रही थी।
तुम्हारी मॉम मुझसे मिलने क्यों आई हैं?
आई डोंट नो, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ।
ओके, लेकिन तुम पहले मुझे उनसे बात करने देना।
कायरव ने इनाया का हाथ थामा और दोनों रूम से बाहर निकल गए। कायरव ने डोर वापस लॉक किया। दोनों नीचे आए लिविंग रूम में सोफे पर मिसेज रायचंद बैठी थीं। डिज़ाइनर ब्लैक साड़ी, खुले बाल, लाइट मेकअप, जो उनकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा था। यकीनन वो उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी बेहद खूबसूरत लगती थी। उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से मेनटेन कर रखा था। ना चाहते हुए भी इनाया खुद को उनसे कंपेयर करने लगी। वो कितनी सिंपल थी। इनाया भी रिस्पेक्ट के साथ कायरव के साथ उनके पैर छुए। उन्होंने भी खुश रहने का आशीर्वाद दे दिया।
कहिए, क्या कहना है आपको?
आशा बता रही थी कि आपको मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इसलिए आप यहाँ आईं। इनाया ने कायरव के साथ उनके सामने लगे सोफे पर बैठते हुए सवाल किया। मिसेज रायचंद की नज़र उसके हाथ पर थी, जिसे कायरव ने अब भी थामा हुआ था, जिसका मतलब था कि वो उसके साथ हैं। उन्होंने नज़रें घुमाकर इनाया को देखा और गंभीरता से बोली, कल मैंने घर पर किटी पार्टी रखी है, जिसमें मेरी फ्रेंड्स आएंगी और वो सब मेरी बहू यानी तुमसे मिलना चाहती हैं। पार्टी शाम को 5 बजे शुरू होगी, तो उससे पहले तुम रायचंद मेंशन पहुंच जाना। मिसेज रायचंद उसे इन्फॉर्म करके उसे पूछ नहीं रही थी, बल्कि उन्होंने ऑर्डर दिया था। आना था, मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था।
मॉम,
कायरव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इनाया बीच में आ गई। नहीं, रहने दो, तुम कुछ मत कहो। मॉम चाहती हैं कि मैं उस पार्टी में शामिल हूँ, उनकी बहू के रूप में उनकी फ्रेंड से मिलूं, तो मैं ज़रूर जाऊंगी। इसी बहाने दादी से भी मिल लूंगी। कितना टाइम हो गया उनसे मिले। एक काम करना, तुम भी फ्री होने के बाद वहीं आ जाना। हम कुछ दिन वहीं दादी के साथ रहेंगे। इस उम्र में वो वहाँ बिल्कुल अकेली होंगी, हम रहेंगे तो उनका दिल बहल जाएगा। कायरव हैरान था और साथ ही थोड़ा परेशान भी। वो रोकना चाहता था, लेकिन इनाया ने इशारे में उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। ओके मॉम, मैं कल टाइम पर घर आ जाऊंगी और आपको मेरे वजह से अपनी फ्रेंड्स के सामने एम्बेरस नहीं होना पड़ेगा। क्या इसके अलावा भी कुछ कहना था आपको? अगर कहना है तो बेझिझक बोल दीजिए। मैं तो कहूंगी कि आप जब यहाँ आ ही गई हैं तो थोड़ी देर रुकिए, हमारे साथ डिनर करके जाइएगा। इसी बहाने हमें साथ में थोड़ा वक्त मिल जाएगा और कुछ बातें भी हो जाएंगी। इनाया सौम्यता से मुस्कुराई। मिसेज रायचंद उसके इस बिहेवियर से थोड़ी उलझन में पड़ गईं। उनका रिश्ता इतना अच्छा कभी था ही नहीं, या ये कहें कि अब तक रिश्ता जुड़ा था लेकिन बना ही नहीं था। बात भी बस एक दो बार हुई, उसमें भी दोनों के बीच किसी न किसी बात पर बहस ही हुई थी। इनाया बहुत अच्छे से जानती थी कि वो उसे अपनी बहू नहीं मानती, उनका कुछ खास इंप्रेशन भी नहीं था। उसके बावजूद आज जितने प्यार, मोहब्बत और अपनेपन से वो उनसे बात कर रही थी, मिसेज रायचंद को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उनके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभरे और वो तुरंत ही उठकर खड़ी हो गई। नहीं, मैं बस यही बताने आई थी, अभी मुझे पार्टी में जाना है, डिनर वहीं होगा और मैं लेट हो रही हूँ तो अब मुझे निकलना होगा। तुम कल टाइम से रायचंद मेंशन पहुँच जाना और याद रहे, तुम रायचंद खानदान की बहू हो, हमारे परिवार की रेपुटेशन का ख्याल रखना अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनाया समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहती थी। उसने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। बाहर तक उन्हें छोड़ने भी गई। उनके जाने के बाद अंदर वापस आई तो सामना कायरव से हो गया, जो हाथ बांधे नाराजगी से उसे ही घूर रहा था।
क्या हुआ, अब तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो?
क्या ज़रूरत थी तुम्हें उन्हें हाँ कहने की? मैं बात कर रहा था ना, फिर मुझे चुप करवाकर बीच में क्यों आई? उनकी फ्रेंड्स उनकी बहू से मिलना चाहती थीं, अगर मैं जाने से मना कर देती तो उनकी कितनी इंसल्ट होती, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। तुम जानती हो ना अभी क्या सिचुएशन है, मॉम ने अभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। उनकी फ्रेंड्स आएंगी पार्टी में और वो सब मिलकर तुम्हें ह्यूमिलिएट करने, मेरी पसंद पर सवाल उठाने, हमारे परिवार पर कमेंट करने का एक मौका नहीं छोड़ेंगी। कैसे करोगी तुम उन सबको हैंडल, जबकि तुम पहले कभी इस तरह की किसी पार्टी में जाना तो दूर तुमने कभी देखा तक नहीं होगा। कायरव गुस्से से भड़का। इनाया आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। क्या तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? मैं पहले कभी इस तरह की किसी पार्टी में नहीं गई। जाना तो दूर, मैंने ऐसी पार्टी देखी तक नहीं। अभी मेरे वजह से इतना बड़ा स्कैंडल बना था, इसलिए तुम्हें डर है कि मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए सिचुएशन और खराब कर दूंगी। मेरे वजह से तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की इंसल्ट हो जाएगी। कायरव के एक्सप्रेशन बदल गए, गुस्सा पल में उतरा और अब वो परेशान सा बोला, नहीं आना, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, तुम्हारी इंसल्ट करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे किसी का डर नहीं, सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। अगर मुझे ऐसा कोई डर होता तो मैं कभी तुमसे शादी ही नहीं करता। मैं पहले से जानता था कि हमारे बीच एक बहुत बड़ा क्लास डिफरेंस है। मेरी वाइफ बनने के बाद तुम्हें इस सोसाइटी के लोगों को फेस करना होगा, वो सब करना होगा जो मेरी वाइफ करती। तुम्हारे लिए सब नया होगा और उसके वजह से तुम्हें एम्बैरेसमेंट या ह्यूमिलिएशन ना फेस करना पड़े। इसलिए मैंने तुम्हें ग्रूमिंग की क्लासेस दिलवाई हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी, वो सब सिखाया था जो तुम्हारे लिए सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए जरूरी था। नॉर्मल सिचुएशन होती तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, क्योंकि जानता हूं कि तुम आराम से सब हैंडल कर लोगी, लेकिन अभी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आई एम डैम श्योर वहां तेज वाला इंसिडेंट का जिक्र जरूर होगा। मॉम तुम्हारा सपोर्ट करेंगी नहीं, तुम्हारे लिए सिचुएशन हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। बस इसलिए मैं चाहता था कि अभी तुम ऐसी पार्टियां, पब्लिक इवेंट्स वगैरह से थोड़ा दूर रहो। मामला ठंडा हो जाए उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। कायरव सफाई दे रहा था और इनाया भावहीन से उसे देख रही थी। अपनी जगह वो सही था और यही बात वो इनाया को समझाने की कोशिश भी कर रहा था। तुम्हें लगता है कि अभी मैं उन सबको फेस नहीं कर पाऊंगी? मुझे अभी लोगों से दूर रहना चाहिए। क्यों, क्या मैंने कुछ गलत किया है जो मैं सबसे छुप कर बैठ जाऊँ, उनका सामना करने से बचती फिरूँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो या तुम्हें किसी से छुपने की जरूरत है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इस वक्त तेज वाला मैटर हर जुबान पर होगा, तो तुम्हारे लिए सबके सवालों के जवाब देना, उनकी बातें सुनना मुश्किल हो जाएगा। तो तुम्हें अभी मीडिया, सोशल इवेंट से थोड़ा दूर रहना चाहिए।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर ये पार्टी कुछ वक्त बाद होगी तो ये बातें नहीं उठेंगी? तब मुझे उनके सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे, तब मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगाए जाएंगे, मेरे कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे, मुझे उनकी बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। मामला ठंडा हो जाएगा तो क्या लोग भी ये बात भूल जाएंगे? वो भी तब जब इसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। टू बी कंटिन्यूड।